एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम एक कह सकते हैं एक ऐसी दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं जहां इंसानियत की परतें उतर जाती हैं।
हाँ, और इंसान अपने असली शायद आदिम स्वभाव के रूबरू होता है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सर विलियम गोल्डिंग के बेहद चर्चित और सच कहूँ तो काफी विचलित कर देने वाले उपन्यास लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के।
जी हाँ, ये एक ऐसा उपन्यास है जो पढ़ने के बाद ना मन में कहीं अटक सा जाता है, और इसके लेखक विलियम गोल्डिंग नोबेल पुरस्कार विजेता।
हाँ, और उनकी लिखाई पर दूसरे विश्व युद्ध का असर बहुत साफ दिखता है। उन्होंने रॉयल नेवी में थे, वो भयानक लड़ाइयां देखी उन्होंने।
और जैसा उन्होंने खुद भी कहा है, युद्ध ने उनके मन से इंसान की जो स्वाभाविक अच्छाई का भ्रम था वो बिल्कुल चकनाचूर कर दिया था।
लड़ाई वैसे ही पैदा करता है जैसे मधुमक्खी शहद, मतलब ये सोच ही इस नॉवेल की आत्मा है।
हाँ, 1954 में छपा था ये, और शुरू में कोई बहुत बड़ी हिट नहीं थी ये किताब।
नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये 20वीं सदी के सबसे जरूरी, सबसे अहम उपन्यासों में से एक बन गए। ये सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है।
नहीं, ये एक डिस्टोपियन रूपक कथा है, मतलब इशारों में बहुत कुछ कहती है।
और इसकी प्रेरणा भी बड़ी दिलचस्प है। गोल्डिंग ने दरअसल इसे लिखा था उस वक्त की जो बच्चों की साहसिक कहानियां थीं, जैसे आर.एम. बैलेंटाइन की द कोरल आइलैंड।
अच्छा।
हाँ, उन कहानियों में तो ब्रिटिश बच्चे बड़े हीरो बन जाते थे, मुश्किल हालात में भी एक बढ़िया समाज बना लेते थे।
बिल्कुल। तो गोल्डिंग ने सवाल उठाया, क्या वाकई ऐसा होता है? क्या बच्चे इतने सभ्य होते हैं? उन्होंने तो पात्रों के नाम तक वही रखे, राल्फ, जैक
और पीटरकिन, जो यहाँ साइमन बन गया है।
हाँ, लेकिन कहानी बिल्कुल उल्टी कर दी।
तो आज हम यही देखने वाले हैं। सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, बल्कि गोल्डिंग के सवालों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे।
हाँ, कि कैसे वो बच्चे जो एक अनजान द्वीप पर फंस गए हैं, वो पहले तो सभ्यता बनाने की कोशिश करते हैं,
और फिर कैसे धीरे धीरे वो कोशिश बर्बरता में बदल जाती है। हम पात्रों को देखेंगे, उनके जरिए जो प्रतीक उभरते हैं उन्हें समझेंगे,
और मानव स्वभाव के जो अंधेरे कोने हैं उनको टटोलेंगे।
हाँ, संक्षेप में कि जब नियम कानून हट जाते हैं तो इंसान के अंदर का वो जिसे जानवर कहा गया है वो कैसे बाहर आता है।
तो कहानी शुरू होती है बड़े नाटकीय ढंग से। एक कोई अनजाना युद्ध चल रहा है बैकग्राउंड में।
हाँ, हमें बताया नहीं जाता कौन सा युद्ध है।
नहीं, बस ब्रिटिश स्कूली बच्चों को कहीं सुरक्षित ले जा रहा एक विमान क्रैश हो जाता है प्रशांत महासागर में कहीं।
और ये बच्चे जिनकी उम्र कोई 6 से 12 साल के बीच है, वो एक अनजान वीरान द्वीप पर पहुंच जाते हैं।
बिल्कुल, कोई बड़ा नहीं साथ में, कोई नियम नहीं, और शुरू में तो वो जगह जन्नत लगती है।
हाँ, सुनहरा बीच, फलदार पेड़, बिल्कुल वैसा ही जैसा कोरल आइलैंड में होता था।
आजादी का एक नशा सा है, लगता है कि बस एक लंबी छुट्टी शुरू हो गई है, रोमांच भरी।
पर ये जन्नत का एहसास, ये भ्रम बहुत जल्दी टूटने लगता है, और यहीं से उपन्यास का जो मुख्य संघर्ष है वो उभरता है।
सभ्यता और व्यवस्था बनाने की इच्छा
और दूसरी तरफ आदिम प्रवृत्ति, हिंसा का आकर्षण। यहीं पर हमारे मुख्य पात्र सामने आते हैं। सबसे पहले रैल्फ।
हाँ, रैल्फ गोरा, दिखने में अच्छा, उसमें एक लीडर वाली बात है।
हाँ,
और उसे ही मुखिया चुन लिया जाता है।
वो लोकतंत्र का, नियमों का, और सबसे जरूरी बचाव की उम्मीद का प्रतीक है।
वो जो सिग्नल फायर जलाना चाहता है,
और वो शंख, कॉन्च शेल, वो उसके हाथ में आता है, और वो सिर्फ बोलने का अधिकार नहीं रहता।
नहीं, वो एक पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक नाजुक सा प्रतीक बन जाता है। और फिर दूसरा ध्रुव है जैक मेरिड्यू, जो गायक मंडली का हेड था स्कूल में, थोड़ा अहंकारी।
हाँ, शिकारी बनने के लिए उतावला। वो शुरू से ही रैल्फ की अथॉरिटी को चैलेंज करता है।
बिल्कुल, जैक प्रतीक है तानाशाही का, शिकार का, मतलब फौरी तौर पर जो इच्छाएं पूरी हो जाएं, बस मांस, ताकत का नशा।
जहां रैल्फ भविष्य की सोचता है, घर वापसी की, वहीं जैक बस अभी में जीता है, वर्तमान की शक्ति, उत्तेजना।
और इन दोनों के बीच दो और बहुत महत्वपूर्ण किरदार हैं।
हाँ, एक तो है पिगी बेचारा।
हाँ, मोटा है, दमे की बीमारी है, थोड़ा सोशली ऑकवर्ड भी है, लेकिन
ग्रुप में सबसे ज्यादा अकलमंद, सबसे लॉजिकल। वो विज्ञान का, तर्क का, पुरानी दुनिया के नियमों का प्रतीक है।
और उसका चश्मा,
वो सिर्फ देखने के लिए नहीं है।
नहीं, वो आग जलाने का जरिया है, यानी सभ्यता, उम्मीद जगाने का एकमात्र जरिया। और ये बात भी अहम है कि कैसे सब उसका मजाक उड़ाते हैं उसकी बात नहीं सुनते।
हाँ, ये दिखाता है कि कैसे भीड़ की भावनाओं के आगे तर्क अक्सर हार जाता है। बिल्कुल। और चौथा कौन?
चौथा है साइमन। वो शांत सा, थोड़ा रहस्यमयी लड़का, पर उसमें एक गहरी समझ है, इंट्यूशन है।
हाँ, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जैसे उसमें कोई आध्यात्मिक समझ हो।
और शायद वो अकेला है जो द्वीप पर जो डर पनप रहा है, वो बीस्ट का डर, उसकी असली प्रकृति को वो शायद समझ जाता है।
वो सहानुभूति का, इंसानियत की वो जो धीमी पड़ती लौ है, उसका प्रतीक लगता है।
हाँ, तो ये चार बच्चे सिर्फ बच्चे नहीं रहते, वो इंसान के समाज और स्वभाव के अलग अलग पहलू बन जाते हैं।
बिल्कुल। तो अब देखते हैं कि ये जो सभ्यता बनाने की शुरुआती कोशिशें थीं, वो कैसे लड़खड़ाने लगती हैं। रैल्फ शंख बजाकर सभाएं करता है।
नियम बनाने की कोशिश होती है, झोपड़ियां बनानी हैं, साफ सफाई रखनी है,
और सबसे जरूरी वो बचाव की आग, सिग्नल फायर, उसे हमेशा जलाए रखना है। पिगी अपने चश्मे से आग जलाने में मदद भी करता है।
ये सब सुनने में तो बड़ा लॉजिकल और जरूरी लगता है ना?
हाँ, लेकिन पहली ही दरार बहुत जल्दी दिख जाती है।
वो आग जलाने की पहली कोशिश में ही लापरवाही होती है और जंगल का एक हिस्सा जल जाता है।
और एक छोटा बच्चा जिसके चेहरे पर जामुनी रंग का बर्थमार्क था, वो गायब हो जाता है हमेशा के लिए।
ये पहली मौत है, एक अनदेखी सी मौत, और ये एक अशुभ संकेत है कि व्यवस्था कितनी नाजुक है।
और साथ ही छोटे बच्चों में वो एक अनजाना सा डर फैलने लगता है, बीस्टी का डर, कोई सांप जैसी चीज।
हाँ, तर्कहीन डर है, पर वो असली लगने लगता है।
और यहीं से प्राथमिकताएं बटने लगती हैं। रैल्फ और पिगी तो व्यवस्था, बचाव, भविष्य की बात करते हैं,
लेकिन जैक और उसके साथी जो अब शिकारी बन गए हैं, उनका ध्यान सिर्फ शिकार पर है। वो कहता है मांस चाहिए।
ये जरूरत और नियम का पहला टकराव है। आपको क्या लगता है, ये बंटवारा इतना स्वाभाविक क्यों लगता है कहानी में?
शायद इसलिए कि शिकार फौरन संतुष्टि देता है, एक आदिम सा रोमांस जगाता है, जबकि झोपड़ी बनाना या आग का ध्यान रखना
वो जिम्मेदारी का काम है, उसमें सब्र चाहिए, दूर की सोच चाहिए।
हाँ, और गोल्डिंग शायद यही दिखा रहे हैं कि इंसान के लिए तात्कालिक इच्छाओं का आकर्षण वो दूर के भले से ज्यादा मजबूत हो सकता है, खासकर जब कोई बाहरी अनुशासन ना हो।
और ये बात तब और साफ हो जाती है जब जैक अपना चेहरा रंग लेता है।
हाँ, वो चेहरा रंगना वो एक टर्निंग पॉइंट है।
बिल्कुल। गोल्डिंग दिखाते हैं कि कैसे वो मुखौटा, वो पेंट, जैक को शर्म से, अपनी पहचान से जैसे आजाद कर देता है।
अब वो जैक नहीं है, वो एक शिकारी है। अब वो अपनी हिंसक इच्छाओं को खोलकर जी सकता है।
और इसी नए रूप में वो पहला सुअर मारता भी है, एक कामयाबी मिलती है उसे।
लेकिन ठीक उसी वक्त जब वो और उसके साथी शिकार की जीत का जश्न मना रहे होते हैं, तभी क्षितिज पर एक जहाज दिखता है।
बचाव का मौका, सुनहरा मौका।
पर आग, सिग्नल फायर बुझी हुई थी, क्योंकि जैक के शिकारी अपना पोस्ट छोड़कर शिकार पर चले गए थे।
रैल्फ का गुस्सा, उसकी हताशा देखने लायक है, पर जैक और उसके साथियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शिकार की जीत के नशे में है।
और इसी झगड़े में जैक गुस्से में पिगी पर हमला करता है और उसका चश्मा, उसका एक शीशा तोड़ देता है।
ये सिर्फ चश्मा टूटना नहीं था, ये तर्क पर, साफ देख पाने की क्षमता पर सीधा हमला था।
यहाँ से चीजें बहुत तेजी से बिगड़ती हैं। वो बीस्ट का डर अब सिर्फ छोटों तक नहीं रहता।
रैल्फ एक और सभा बुलाता है, वो चाहता है कि तर्क से इस डर को खत्म किया जाए, लेकिन जैक
इस डर का इस्तेमाल करता है अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। वो नियमों को खुलेआम चुनौती देता है, कहता है नियमों की ऐसी तैसी।
हाँ, और वो लड़कों को शिकार का, दावत का और बीस्ट से बचाने का लालच देकर अपनी तरफ खींच लेता है।
और तभी, जैसे उस डर को सच साबित करने के लिए ही, रात में द्वीप के ऊपर कोई हवाई लड़ाई होती है
और एक मृत पैराट्रूपर का शव पैराशूट समेत पहाड़ पर आकर गिरता है।
हवा में हिलता हुआ उसका वो शव, सुबह जब सैम और एरिक आग की निगरानी कर रहे होते हैं, उन्हें वो असली बीस्ट लगता है।
अब डर का एक फिजिकल प्रूफ मिल गया है, भले ही वो गलत पहचान हो।
और यहीं पर साइमन की वो बात याद आती है, वो धीर से कहता है शायद बीस्ट, शायद वो सिर्फ हम ही हैं।
कितनी गहरी बात और कितनी सच, लेकिन उसकी बात का मजाक उड़ाया जाता है, कोई मानना ही नहीं चाहता।
हाँ, कौन मानेगा कि असली राक्षस बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर है। ये जो इनकार है, यही तो त्रासदी की तरफ ले जाता है ना?
बिल्कुल। जैक इस डर को पूरी तरह भुनाता है, वो रैल्फ के नेतृत्व को पूरी तरह ठुकरा देता है, अपना अलग कबीला बना लेता है।
कैसल रॉक पर, वो चट्टानी किला, अब उसका शासन डर और लालच पर टिका है, और वो अपनी ताकत दिखाने के लिए एक बहुत क्रूर काम करता है।
वो मादा सुअर का शिकार, वो सिर्फ खाने के लिए नहीं था?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक उन्मादी हिंसक अनुष्ठान था, जैसे वो लड़के अपनी आदिम वृत्तियों से जुड़ रहे हों।
और उसके बाद वो जो करते हैं वो उपन्यास के टाइटल का बिल्कुल केंद्र है।
हाँ, वो सुअर का सिर काटकर खून टपकता हुआ उसे एक नुकीली छड़ी पर टांग देते हैं।
बीस्ट के लिए भेंट, चढ़ावा, और मक्खियां उस पर भिनभिनाने लगती हैं।
यही है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, मक्खियों का राजा। वो सड़न का, गंदगी का, अंदर की बुराई का घिनौना प्रतीक बन जाता है।
और इसी भयानक प्रतीक से सामना होता है अकेले साइमन का। वो जंगल में अपनी छुपी हुई जगह पर है
और उसे मति भ्रम होता है। उसे लगता है जैसे वो सड़ता हुआ सिर उसे बातें कर रहा है।
हाँ, जैसे लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज कह रहा हो, तुम सोचते थे बीस्ट कोई ऐसी चीज है जिसे तुम शिकार करके मार सकते हो। मूर्ख, मैं तो तुम्हारा ही हिस्सा हूँ। मैं ही वजह हूँ कि सब कुछ गड़बड़ क्यों हो रहा है।
ये गोल्डिंग का सबसे साफ संदेश है, बुराई बाहर नहीं, अंदर है।
अब साइमन को सच्चाई पता है कि पहाड़ पर जो बीस्ट है वो तो मरा हुआ पायलट है, और असली बीस्ट तो लड़कों के अंदर ही है।
वो ये जरूरी बात बताने के लिए भागता है जैक के कबीले की तरफ, जहाँ दावत चल रही है, तूफान घिर रहा है, लड़के शिकार के उन्माद में नाच रहे हैं।
लेकिन अंधेरे में, डर में, उस सामूहिक पागलपन में वो जो चिल्लाता हुआ लड़का उनकी तरफ आ रहा है,
उसे ही वो बीस्ट समझ लेते हैं।
और फिर शायद कहानी का सबसे दुखद, सबसे भयानक पल आता है।
वो भीड़ जिसमें अनजाने में रैल्फ और पिगी भी शामिल हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, वो साइमन पर टूट पड़ती है
और उसे मार डालती है। सच बताने वाला, उन्हें बचाने वाला, उसी भीड़ के हाथों मारा जाता है। मासूमियत की, समझ की हत्या।
अगली सुबह अपराध बोध है और इनकार भी है। रैल्फ कहता है वो हत्या थी,
पर पिगी बेचारा हताशा में कहता है नहीं, वो एक दुर्घटना थी। वो सच का सामना नहीं कर पा रहा।
सभ्यता का जो पर्दा था वह पूरी तरह फट चुका है। दूसरी तरफ जैक का राज अब सिर्फ डर पर टिका है।
हाँ, वो अपनी ताकत दिखाने के लिए विल्फ्रेड नाम के एक लड़के को बिना वजह पिटवाता है। और फिर
रात के अंधेरे में जैक और उसके साथी रैल्फ के कैंप पर हमला करते हैं।
वो शंख नहीं चुराते, अब शंख का कोई मतलब नहीं रहा।
नहीं, वो चुराते हैं पिगी का बचा हुआ चश्मा।
चश्मे की चोरी? ये सिर्फ एक चीज की चोरी नहीं थी। नहीं, ये तर्क की चोरी थी, भविष्य देखने की क्षमता की चोरी, आग जलाने की आखिरी उम्मीद की चोरी।
अब रैल्फ और पिगी बिल्कुल असहाय हैं, लेकिन पिगी अपनी सारी कमजोरियों के बावजूद एक आखिरी हिम्मत का काम करता है।
हाँ, वो जोर देता है कि उन्हें कैसल रॉक जाना चाहिए, जैक से बात करनी चाहिए, तर्क से अपील करनी चाहिए, चश्मा वापस मांगना चाहिए।
वो अब भी कहीं ना कहीं सभ्यता में, बातचीत में यकीन करना चाहता है।
वो उस नाजुक शंख को हाथ में लेके कैसल रॉक पहुंचते हैं। रैल्फ जैक को चोर कहता है, चश्मा मांगता है। माहौल बहुत तनाव भरा है।
लड़ाई छिड़ जाती है, सैम और एरिक को पकड़कर बांध दिया जाता है, और तभी पिगी अपनी आखिरी दिल को छू लेने वाली अपील करता है।
क्या कहता है वो?
वो चिल्लाकर पूछता है, क्या बेहतर है, नियम होना और सहमत होना, या शिकार करना और मारना, कानून और बचाव, या शिकार और तोड़फोड़।
सभ्यता की आखिरी पुकार, लेकिन
वो अनसुनी रह जाती है। ऊपर चट्टान पर रॉजर खड़ा है, वो लड़का जो अब तक सिर्फ चुपचाप क्रूरता देखता था,
अब वो पूरी तरह बेलगाम हो चुका है। वो जानबूझकर एक बड़ा सा पत्थर नीचे लुढ़काता है।
पत्थर सीधे पिगी को लगता है और पिगी चीखता हुआ नीचे चट्टानों पर गिरकर मर जाता है।
और उसी पल उसके हाथ से छूटा हुआ शंख भी जमीन पर गिरकर हजार टुकड़ों में बिखर जाता है।
दिल दहला देने वाला सीन है वो। तर्क की मौत और लोकतंत्र के प्रतीक का अंत एक साथ।
बिल्कुल, पिगी की मौत और शंख का टूटना, ये वो पॉइंट है जहां सभ्यता पूरी तरह हार जाती है। जैक अब खुला वाशी है।
हाँ, वो रैल्फ पर भाला फेंकता है, चिल्लाता है, देखो यही मिलेगा तुम्हें, अब मैं मुखिया हूं।
रैल्फ अकेला है, अब वो लीडर नहीं, शिकार है।
आखिरी चैप्टर रैल्फ के शिकार का एक भयानक विवरण है। उसे जानवर की तरह खदेड़ा जा रहा है।
सैम और एरिक को टॉर्चर करके उसका ठिकाना उगलवा लिया जाता है,
और उसे बाहर निकालने के लिए जैक के लड़के पूरे द्वीप में आग लगा देते हैं।
वो स्वर्ग अब जलता हुआ नरक बन गया है। रैल्फ बस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, भाग रहा है, और आखिरकार थककर समुद्र तट पर गिर पड़ता है।
और तभी कहानी में एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मोड़ आता है।
रैल्फ आंखें उठाता है और देखता है एक सफेद वर्दी पहने हुए ब्रिटिश नौसेना का अफसर।
हाँ, वो अफसर और उसके साथी द्वीप से उठते धुएं को देखकर जांच करने आए हैं। वही धुआं जो रैल्फ को मारने के लिए लगाई गई आग का था।
वयस्कों की दुनिया का अचानक आ जाना, जैसे एक झटके में सब कुछ बदल देता है।
वो वैश्य शिकारी लड़के, रंगे हुए चेहरे, हाथों में भाले, अचानक फिर से छोटे, गंदे, डरे हुए बच्चे बन जाते हैं।
और वो अफसर जो समझ नहीं पा रहा कि यहाँ हुआ क्या है इन ब्रिटिश बच्चों के साथ, वो बड़ी मासूमियत से पूछता है,
क्या चल रहा था? कुछ खेल वेल चल रहे थे क्या? मौज मस्ती?
फन इन गेम्स। ये टिप्पणी कितनी आयरोनिक है। एक तरफ बच्चों का ये बर्बर खेल और दूसरी तरफ वो वयस्कों का महाविनाशकारी युद्ध जिससे ये बच्चे भाग रहे थे।
और रैल्फ जो अब तक शायद शौक में था, वो फूट फूट कर रो पड़ता है।
हाँ, वो रोता है अपनी खोई हुई मासूमियत पर, इंसान के दिल में जो अंधेरा है उस पर, और अपने सच्चे समझदार दोस्त पिगी की बेमतलब मौत पर।
और उसे रोता देख के बाकी लड़के भी रोने लगते हैं। उनकी वो वैशी चीखें अब खोए हुए बच्चों के रोने में बदल जाती हैं।
तो कहानियां खत्म होती है, बचाव तो हो जाता है, लेकिन वो बचाव भी अधूरा सा, विडंबना भरा लगता है।
हाँ, और हमें कई गहरे सवालों के साथ छोड़ जाती है ये कहानी।
निश्चित रूप से गोल्डिंग का जो मुख्य संदेश है वो तो साफ है कि सभ्यता, सिविलाइजेशन एक बहुत पतली सी परत है,
और उसके नीचे बर्बरता हमेशा मौजूद रहती है। वो बीस्ट या शैतान कोई बाहर की चीज नहीं,
बिल्कुल,
वो इंसान के अंदर ही है।
बिल्कुल। ये उपन्यास भीड़ की मानसिकता के खतरों को भी दिखाता है, कैसे तर्क पर भावना हावी हो जाती है,
और मासूमियत का खोना, ये तो शायद अनिवार्य है।
हाँ, और वो सारे प्रतीक, शंख, चश्मा, आग, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, वो चेहरे पर लगा मुखौटा, ये सब इन विचारों को और गहरा करते हैं।
नहीं, हमें सिखाती है कि समाज के जो नियम हैं, जो ढांचे हैं, वो कितने जरूरी हैं, लेकिन ये भी कि वो कितने नाजुक हो सकते हैं।
और ये हमें अपनी ही फितरत के दोहरेपन पर सोचने को मजबूर करती है। अच्छाई और बुराई दोनों की क्षमता है हम में।
बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि छपने के इतने साल बाद भी लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।
हाँ, ये मानव स्वभाव के बारे में एक असहज करने वाली पर बहुत जरूरी पड़ताल है, एक चेतावनी है कि हमें हमेशा अपनी अंदरूनी कमजोरियों और ताकतों के प्रति सचेत रहना होगा।
ये संवाद यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।